ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए नारी शक्ति वंदन विधेयक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक संदीप फूकन और पत्रकार चेतन चौहान।
आज नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में प्रधानमंत्री और सारे एमपीज एंटर हुए और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि नई बिल्डिंग से अमृत काल जो अगले 25 सालों का है उसमें नई दिशा देश को मिलेगी। हमारे साथ है संदीप फूकन इस विषय पे बातचीत करने के लिए। संदीप, सवाल है मेरे आपसे कि पहला कि जो नई बिल्डिंग में आज गए हैं, पुरानी पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग से जो अंग्रेजों के जमाने की है, उसके क्या सिंबॉलिक डिफरेंस भारत सरकार दिखाना चाहती है और क्या फर्क पड़ेगा देश में आने वाले सालों में, इसका किस तरह का इम्पैक्ट होगा?
देखिए, जो हमने अंग्रेजी में एक कहावत है चेंज एंड कंटिन्यूटी, हमारा एक बहुत ही पुराना एक एंशिएंट देश है लेकिन हम एक मॉडर्न नेशन है। हमारी बहुत पुरानी सभ्यता है लेकिन हम एक आधुनिक देश भी हैं और तकनीक जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो हम काफी आगे बढ़े हुए हैं, लीडरशिप रोल में हम लोग हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा सिंबॉलिक, एक अच्छा प्रतीक है कि हम पुराने को छोड़े नहीं हैं, लेकिन हम जो आधुनिकता है उसको भी हम एम्ब्रेस हमने किया। जो नई बिल्डिंग है उसमें भारत की जो गौरवशाली जो लोकतंत्र की जो ट्रेडिशन है, जो हिस्ट्री है, वो कंटिन्यू करेगा लेकिन एक नई बिल्डिंग में। और जो पुराना वो एक ऐतिहासिक इमारत है जिसमें भारत का संविधान बना था, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इतने बड़े नामी जो लोग थे, उन्होंने सबने इसमें कंट्रीब्यूट करके जो मॉडर्न लोकतंत्र है हमारा, जो आधुनिक लोकतंत्र है, उसका नींव रखा, फाउंडेशन रखा। और उस फाउंडेशन पे चल के हम आगे जाके जैसे जैसे हम उभरते जा रहे हैं एक वर्ल्ड पावर के तौर पे, नया पार्लियामेंट उसका एक प्रतीक है, भारत का जो उभरती हुई जो ताकत है उसका एक प्रतीक है। लेकिन कंटिन्यूटी ये है कि जो हमारा पुराना जो ट्रेडिशन है लोकतंत्र का वो जारी रहेगा और एक नए इमारत में। और पुराना को जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उसे पुराने पार्लियामेंट के तौर से नहीं, बल्कि उन्होंने घोषणा की कि उसे संविधान सदन कहा जाएगा और आज ही लोकसभा अध्यक्ष ने आधिकारिक रूप से उन्होंने सूचना जारी करते हुए गैजेट ऑफ इंडिया में ये नया पार्लियामेंट बिल्डिंग को अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत का संसद घोषित कर दिया कानूनी तौर पे, और जो पुरानी इमारत है उसे संविधान सदन कहा जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि उसमें वो ऐतिहासिक है और उसका जो रोल है वो कभी कम नहीं हो सकता।
संदीप, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पुराना संसद भवन है जिसमें हमने इतने साल नई पार्लियामेंट कवर किया, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस, डिबेट्स सुनी, देखी, और उसी पार्लियामेंट बिल्डिंग में भारत का संविधान भी बनाया गया। तो उसे जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान भवन होगा, उसको उसकी जो गरिमा है उसको मेंटेन किया जाएगा, उसको कंटिन्यू किया जाएगा। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जो कल भी हुआ, आज भी हुआ, उसमें अमृत काल की, अगले 25 सालों की भारत की सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, अलग अलग सेक्टर में जैसे डिफेंस में, एनर्जी में, ऑयल में, मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी बातें भी की। उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो देश है उसे एस्पिरेशनल देश बनाना है युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो गरीब तबका है उसको उठाना है, और एक रिफॉर्म जो करना है वो देश में कैसे अगले सालों में होना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनकी सरकार ने पिछले 9 सालों में क्या क्या चेंजेस लाए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट किया है और किस तरह से भारत पिछले 9 सालों में तब्दील हुआ है। तो जो प्रधानमंत्री ने अपना एक स्पेशल सेशन के द्वारा अपना एक एक्शन प्लान भी रखा है आने वाले सालों के लिए, और उन्होंने अपनी G20 में जो भारत में एक सक्सेसफुल G20 हुई, इसमें दिल्ली डिक्लेरेशन कंसेंसस के साथ सामने आई जो पिछली बार बाली में नहीं हुआ, तो उन सब पे आपका क्या कहना है कि ये किस तरह का मैसेजिंग सरकार या प्रधानमंत्री देना चाहती है जनता को नए संसद भवन में एंटर करने से।
देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये स्पेशल सेशन से शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री जी ने जब मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि हमने गणेश चतुर्थी के अवसर पे हम ये सेशन आरंभ कर रहे हैं और जैसे गणेश जी विघ्नहर्ता है, भारत की विकास में कोई विघ्न ना रहे, उसी मंशा से हम पुराने से नए भवन में प्रवेश करेंगे जो आज प्रवेश हो गया। उन्होंने एक तरीके से आप ये बता सकते हैं कि जो भाषण था उसमें क्या क्या अचीव किए गए और क्या उनका रोड मैप है, उनका विजन क्या है देश के लिए, और साथ ही साथ ये सारे चुनौतियां भी है, चाहे आपका जैसे आपने अभी आत्मनिर्भर जो प्लान है वो चाहे डिफेंस में हो या एनर्जी के क्षेत्र में हो या ह्यूमन रिसोर्स में हो, एजुकेशन से हो, ये सारे अपॉर्चुनिटीज भी है, चैलेंजेस भी है, ये चुनौतियां भी है और ये अवसर भी है, क्योंकि इन पे काम करके जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ अमृतकाल के लिए नहीं, अमृतकाल 25 साल के लिए है और प्रधानमंत्री ये बोल चुके हैं कि पहले अपने कई भाषणों में उन्होंने पहले कहा था कि 2047 तक जब हम 100 साल पूरे हो जाएंगे हमारी आजादी के, तो वो भारत को एक विकसित देश के हिसाब से देखना चाहेंगे। उस प्रयास की तरफ क्या क्या काम किया गया है और क्या क्या करना है उन्होंने उसका व्याख्या किया, और आप अगर भाषण सुने तो दोनों बहुत ही सौहार्दपूर्ण भाषण मैंने दोनों के सुने, जो नेता प्रतिपक्ष है उनका भी सुना, उन्होंने भी संविधान के जो वैल्यूज हैं उनके बारे में बात किया, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने राज्यसभा में किया और अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में किया, और अधीर रंजन चौधरी ने ये भी कहा कि संविधान सर्वोपरि है और संसद भवन जो नए संसद भवन जो बना है, उन्होंने कहा कि इसकी डिमांड पहले भी हो चुकी है जब मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष थी तब भी, उसके बाद जब सुमित्रा महाजन आई 2014 में तब भी ये डिमांड उठा था और आज वो साकार हुआ, और उन्होंने कहा कि उसी के तहत ये भी जो इतना शानदार जो बना है इमारत नए संसद भवन का, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये चलेगा। तो काफी अच्छा डिस्कशन था, जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री का जो स्पीच था वो दरअसल उनका विजन जो देश के लिए है वो उसका व्याख्या किया उन्होंने अपने भाषण के जरिए।
संदीप, जैसे पहला दिन आज पार्लियामेंट का नई बिल्डिंग में शुरू हुआ, तो पहला बिल जो सरकार लेके आई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए स्टेट असेंबलीज और लोकसभा में करने के लिए है। ये बिल जैसे आपको मालूम है कि बहुत बहुत सालों से, पिछले 30-40 सालों से पार्लियामेंट में या अलग डिस्कशन में रहा है, और 2009-10 में सरकार ने, कांग्रेस यूपी की सरकार ने कोशिश भी की थी इसको पास करने की, पार्लियामेंट में हो नहीं पाया, काफी पार्टियों ने इसका विरोध किया था। तो ये जो बिल अब लाया गया है इसके क्या क्या सेलिंग फीचर्स हैं और आपको लगता है कि इस बार पार्लियामेंट में ये पास हो जाएगा?
देखिए पहले फीचर्स पे बता दें, ये बिल दरअसल मैंने ध्यान से अभी पढ़ा बिल, क्योंकि वो बिल पेश हो चुका है और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दोनों सदनों में उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया था और उसकी कॉपी हमने देखा। तो लगभग जो 2010 में जो कानून राज्यसभा ने पारित किया था, एक तिहाई सीटें आरक्षित रहेगी महिलाओं के लिए लोकसभा में और जो स्टेट असेंबलीज है, जो राज्यों के जो असेंबलीज है, और जहां तक इससे लागू करने की बात है उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें दो प्रावधान बड़े क्लियरली मेंशन किया गया है। एक प्रावधान ये है कि ये जो कानून है वो तभी लागू होगा जब डिलिमिटेशन हो जाएगा। डिलिमिटेशन, जैसे आपको पता है, डिलिमिटेशन का मतलब है जो बाउंड्रीज है लोकसभा सीटों की उसको दोबारा से रीड्रॉ किया जाएगा, और डिलिमिटेशन प्रोसेस 2026 तक ही हो पाएगा, मतलब 2026 के बाद ही होगा। और उसमें ये भी लिखा गया है डिलिमिटेशन होगा जो कि नए सेंसस के बेसिस पे होगा, लेटेस्ट सेंसस के बेसिस पे। तो लेटेस्ट सेंसस, चेतन आपको पता है, 2021 में होना था, वो हो नहीं पाया क्योंकि कोविड के चलते। तो वो सेंसस जब हो जाएगा उसके बाद जब लोकसभा और कि जब वो बाउंड्रीज दोबारा से अंकित किया जाएगा, मतलब रीड्रॉ किया जाएगा, उसके बाद ही लागू होगा। तो 2029 का जो जनरल इलेक्शंस होंगे तब तक लोकसभा के जो संख्या है उस पर भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वो नए जनगणना के आधार पे होगा और उसके बेसिस पे एक तिहाई रिजर्वेशन होगा। मेरा कहने का मतलब ये है 543 सीटें जो है उस पर नहीं होगा, बल्कि नए फिगर जो उभर के आएगी जनगणना के बाद और डिलिमिटेशन के बाद उस पर रिजर्वेशन होगा। ये हो गया आपके सेलियंट फीचर्स। 1/3 रिजर्वेशन जो 33%, ये जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स है उसके अंदर भी होगा। आपने जहां तक आपका दूसरा हिस्सा है कि क्या आपको लगता है कि ये पारित हो जाएगा, देखिए अगर आप संख्या देखें और पार्टीज के जो पब्लिकली स्टेटेड पोजीशन, उन्होंने जो पब्लिकली जो बोला है उसके हिसाब से संख्या में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने कहा, वामपंथी हमेशा से कह रहे हैं, फिर आपका जो तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो भारत राष्ट्र समिति कहलाते हैं आजकल, उन्होंने कहा कि वो समर्थन में है, समाजवादी पार्टी ने भी कड़ा रुख नहीं अपनाया है। हाँ, पास्ट में हमने, पहले पूर्व में हमने ये जरूर देखा है कि कुछ जो पार्टीज हैं कोटा विद इन कोटा की बात कर रहे थे के लिए, अदर बैकवर्ड पिछड़ों के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और इनमें से राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, ऐसे पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने भी कहा था कि समाजवादी पार्टी भी उसमें शामिल थी पहले पूर्व में, इनका मानना था कि कोटा विद इन कोटा पिछड़ों के लिए, फिलहाल जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए है, लेकिन पिछड़ों के लिए भी उन्होंने डिमांड किया था। और इसी के चलते 2010 में जैसे लालू जी की पार्टी साथ में थे, कांग्रेस के सहयोगी रहे थे, हालांकि 2009 के चुनाव के बाद वो लोग फॉर्मली एलाइज नहीं थे, लेकिन आरजेडी साथ में थे, जनता दल यूनाइटेड नहीं थे उस टाइम, वो बीजेपी के साथ में थे, लेकिन 2010 में भाजपा और कांग्रेस दोनों समर्थन में थे, लेकिन बीजेपी के तब सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, इन्होंने बहुत कड़ा विरोध किया। और मुझे याद है वो दिन मार्च में 2010 में पारित तो हुआ था, मार्शल बुला के कई एमपी को बाहर निकालना पड़ा फिजिकली, और उसके बाद वो पारित हुआ राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में नहीं हो पाया और वो बिल लैप्स हो गया। तो यही कारण है। और उसका दूसरा पहलू ये भी है चेतन, कि ये एक संविधान को बदलने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, संविधान बदलने का जो प्रक्रिया है वो फॉलो करना होता है, इसका मतलब 2/3 बहुमत चाहिए और आपको डिवीजन से वोटिंग होके ये पास होती है, और आप जब तक हाउस में ऑर्डर नहीं रहेगा, अगर शोर शराबा हंगामा हुआ तो ये बिल पारित नहीं हो सकता।
हाँ, उससे 33% रिजर्वेशन महिलाओं को लोकसभा में और स्टेट असेंबली में मिलेगा। इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप,
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे नारी शक्ति वंदन विधेयक पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक संदीप फूकन और पत्रकार चेतन चौहान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।